نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا میرے اللہ رب العالمین کے لیے. یہ الفاظ اس پیغمبر کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست، اس کے خلیل کہلائے. اور ذوالحج کا مہینہ جب شروع ہونے لگتا ہے تو جس پیغمبر کی یاد ہمیں سب سے زیادہ آتی ہے اور جن کا ذکر ہوتا ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری قربانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو قربانی کیا ہے؟ قربانی قرب سے نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے انسان جو عمل کرتا ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ گوشت کھانا، پارٹیز کرنا اور کڑھائیاں کھانا اور یہ کرنا، یہ ہے قربانی. حالانکہ قربانی اصل میں اتنی ایک خوبصورت چیز ہے اور اتنا پیارا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے، کہ جب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے نا، تو یہ ایک باپ اپنے بیٹے کا خون بہانے جا رہا ہے. اور اللہ تعالی کے سامنے دراصل وہ اپنے بیٹے کو نہیں، اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا تقریباً 89 ایئرز کی ایج میں ملا، بڑی دعاؤں کے ساتھ، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے صالح اولاد اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمائی. اور اس اولاد کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جاتے ہیں ایک ایسے صحرا میں، ایک ایسی بیابان جگہ میں، تھوڑا سا امیجن کریں، فلسطین سے چلے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کہ چل ابراہیم، کہاں چلو یار، جہاں جبرائیل علیہ السلام لے کر جائیں. اور جبرائیل علیہ السلام چلاتے چلاتے کہاں لے کر آ گئے، ایک ایسے ریگستان میں جہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا، ایک صحرا تھا بس، نہ کعبہ ہے وہاں پہ، نہ کوئی انسان ہے، کوئی زیر ہو نہیں، بس پہاڑ کھڑے ہیں، ویرانہ بیابان جگہ، حتیٰ کہ وہاں پہ کوئی کھانے پینے تک کی بھی چیز نہیں، کہ کوئی درخت ہی ہو، کوئی پھول پودے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہیں دوسرے ملک سیٹل کرانے نہیں لے کے جا رہے تھے کہ بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آئیں تاکہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے، اپنے بیٹر فیوچر کے لیے. اس لیے اپنی اولاد کو کہیں لے جا کے بساتے ہیں. ان کی پہلی قربانی یہی نہیں، اس سے پہلے بھی قربانیاں تھیں، مگر بیوی اور بچے کی صورت میں یہ قربانی ان کی پہلی قربانی تھی کہ ان کو وہاں پہ چھوڑا ہوں. اور یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ یہ جانتا ہو کہ میرا رب ہے نا جو ان کو سنبھالے گا. یاد رکھیے کہ توحید کا جب ہمارے ذہن میں ایک خاکہ آتا ہے تو توحید ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، بس یہ توحید ہے، اس کو ہی ہم کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ توحید صرف یہ نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے یہ توحید ہے، مگر میرا اللہ ہر محبت سے اوپر اس کی محبت ہے، یہ توحید ہے. ہر وابستگی جو اٹیچمنٹ ہے، ہر اٹیچمنٹ سے زیادہ میری اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہے، یہ توحید ہے. हर एक के ऊपर भरोसे से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा, ये तौहीद है। हर एक के खौफ से ज्यादा उससे मुझे खौफ है, ये तौहीद है। तौहीद एक इतनी छोटी बात नहीं है कि इंसान कह दे कि वो अल्लाह एक है, बस ये तौहीद। तौहीद की डेप्थ को समझें तो आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सारी तौहीद के नमूने नजर आएंगे कि तौहीद होती क्या है। हमें समझ आ जाती है कि तौहीद असल में कहते किसको। उनका जो भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर था, इतना यकीन, हालांकि असबाब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता, कोई जिंदा बचेगा ही नहीं यहाँ पे, इनको यहाँ पे छोड़ के जाना ये तो बेवकूफी है, इनको यहाँ पे छोड़ के क्या मर जाएंगे। लेकिन क्या बात थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि जब बीबी और बच्चे को वहां उतारा और बीबी हाजरा पूछती है, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हैं, हमें किसके सहारे पे छोड़े जा रहे हैं, हमें क्यों छोड़े जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं आगे से। सवारी पलटाई और वापस चल पड़े। और बीबी हाजरा फिर पूछती है कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया। फरमाया ऐसे, सर हिला दिया। तो वो आगे से जवाब देती हैं, फिर हसबी अल्लाह व नियमल वकील, फिर मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखें और बीबी हाजरा का तवक्कुल देखें, दोनों ही तवक्कुल के आला मकाम पर है। ना वो घबराई कि ये क्या करने लगे, जब पता चल गया अल्लाह का हुक्म है तो फिर जानती है अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। जिंदगी में कितने ही ऐसे मौके आते हैं कि असबाब हमारी फेवर में नहीं होते, असबाब कुछ और बता रहे होते हैं, और हम सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे जब चल पड़ते हैं तो अल्लाह ताला फिर थाम लेता है, अल्लाह ताला मदद करता है वहां से जहां से इंसान को कुछ कभी इम्कान भी नहीं होता कि यहां से भी कोई मदद आ सकती है। फिर आप देखें कि बीबी हाजरा उस छोटे से बच्चे को लेकर, जब वो थोड़ा सा खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, तो अब क्या है वहां पे, कुछ भी नहीं, चारों तरफ कुछ भी नहीं। और आपको ये कहानी पता है कि बीबी हाजरा कैसे सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी है। ये भी क्या है तवक्कल, अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा, मेरा भरोसा अल्लाह पे है। और हमें पता चलता है कि भरोसे की वकालत की, वकील होने की, अल्लाह ताला को वकील बनाने की एक ये बेहतरीन मिसाल है कि जिसमें हमें ये पता चला कि वकील बनाने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। वकील बनाना ये है कि इंसान अल्लाह पे भरोसा करे लेकिन कोशिश अपनी करता रहे। और वो कोशिश कितनी थी, एक दौड़ लगा के पता तो चल गया था पानी है ही नहीं, फिर दूसरी दफा क्यों दौड़ी, फिर तीसरी दफा भी दौड़ी, फिर चौथी दफा भी दौड़ी, इंसान गिव अप कर देता है। बीबी हाजरा की जिंदगी में क्या पता चलता है, मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला पे भरोसा कायम रखो, उसकी मदद आएगी। जब उसके भरोसे में कोई कदम उठाता है तो अल्लाह ताला मदद जरूर करता है। और अल्लाह ने मदद की कि सात दफा चक्कर लगाने के बाद फिर पानी निकला, अल्लाह चाहता तो पानी पहले ही निकाल देता। और पानी कहां से निकला, उस रेत से जिससे पानी निकलने का कोई इम्कान ही नहीं होता। क्या बीबी हाजर की दौड़ से पानी निकला, नहीं, हम तो इतनी दफा वहां पे दौड़ते हैं कोई पानी नहीं निकलता। इससे पता चलता है कि इंसान कोशिश जरूर करे लेकिन भरोसा अपनी कोशिश पे नहीं कि मेरी कोशिश से ये हुआ, मैंने मेहनत की इसलिए हुआ, मैंने हाथ पैर हिलाए इसलिए हुआ, नहीं, मैंने कोशिश की लेकिन नतीजा अल्लाह ने इसके अंदर से निकाला, नतीजे के लिए अल्लाह की तरफ देखो। फिर आप देखें सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब जिंदगी आप देखते हैं ना, वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। किसी ने अल्लाह का वफादार देखना है ना तो इब्राहिम को देखो। वफा होती क्या है, इब्राहिम से सीख लो। वफादारी उन्होंने जो निभाई ऐसी कोई नहीं निभा सकता कि जिस वक्त अपने बेटे को, फिर जब सूरह साफात में आता है कि ख्वाब देखा और फिर बेटे से मशवरा किया कि बेटे आप बताओ कि मुझे तो ऐसे ख्वाब आए, बाप ये नहीं कह रहा कि बेटे से इजाजत ले रहा है, बेटे को भी नेकी में शामिल कर लिया कि बेटा भी कहता है या अब अतिफ अलमा तो ए अब्बा जान, आप वैसे ही करें जैसे आपको हुक्म दिया गया। बाप भी मिसाली और बेटा भी मिसाली। आज ऐसे बाप बनने की जरूरत और ऐसे बेटे बनने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमसे हमारे बेटे नहीं मांगता, मगर वो कहता है कहीं तो कुछ कुर्बान करके दिखाओ, कहीं तो अपनी मोहब्बत कुर्बान करो, कहीं तो अपनी ख्वाहिश कुर्बान करो, कहीं तो कुछ अल्लाह के रास्ते में दे के दिखाओ। क्योंकि इंसान लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, इंसान उस वक्त तक नेकी को पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि अपनी महबूब चीज ना अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे। नेकी है ही वो, फालतू चीजें, फारिग चीजें, बेकार चीजें, ठीक है आपने किसी को दे दी या आपने कह दिया ये अल्लाह वास्ते कि मैं देती हूँ, ये गलत बात है, लेकिन कितनी दफा कोई महबूब चीज उठा के अल्लाह के रास्ते में दी हो। क्योंकि इब्राहिम के तो बड़े महबूब बेटे थे, इकलौती औलाद, वो भी कितने सालों के बाद मिली, बुढ़ापे की औलाद, पहली औलाद और इतनी प्यारी औलाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि ऐ अल्लाह बस भी कर, बड़े इम्तिहानों का, हमारे पास तो एक आता ना इम्तिहान पे दूसरा आ जाए ना तो हम कहते हैं हाय जिंदगी इम्तिहान पे इम्तिहान, हमारे तो इम्तिहान ही नहीं खत्म हो रहे, मेरे ऊपर ही इम्तिहान आने हैं सारे, अल्लाह ने मुझे ही देख लिया इम्तिहान, ऐसी बुरी बातें मुंह से निकालते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह इतने तो इम्तिहानों से गुजर चुका हूँ, अल्लाह बस भी कर दे, आप बेटे का भी इम्तिहान लेगा। अल्लाह ताला ने बेटा नहीं लेना था, अल्लाह ताला तो बेनियाज है, उसको कुछ नहीं चाहिए, मगर उसने ये देखना था कि इब्राहिम बेटे की मोहब्बत के ऊपर मेरी मोहब्बत को तरजीह देता है या नहीं, बेटे की मोहब्बत से ऊपर है मेरी मोहब्बत या नहीं। क्या तू बेटे की मोहब्बत को मेरी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर सकता है? और यही तो इस्लाम है, जिसमें इस्लाम का माना भी क्या है, इंसान सरेंडर कर दे अपनी मर्जी को, सुपुर्द कर दे अल्लाह ताला के आगे, मुती हो जाए, फरमा बरदार हो जाए, ये तो इस्लाम है। और जो कुर्बानी है ना, ये असल में इंसान का फिदा होने का, कि मैं अल्लाह के आगे फिदा हो जाऊं, उसका एक अमली इजहार है कि मैं फिदा कर दूं अपने आप को, मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए है। और बस इसकी एक सूरत है, इसका एक इजहार है ये कुर्बानी करना। और हम इसकी जिस्ट को नहीं समझ पाते, हम बस ये कुर्बानी है बकरा खरीदा और उसके बाद वहां पे दे दिया और वो आपको गोश्त बना के दे देंगे, बस गोश्त खा लिया, ये कुर्बानी। इसके पीछे के जज्बा कहाँ गया? वो जिनकी याद में ये कुर्बानी हो रही वो कहाँ गई? वो याद ही हमें हमें पता ही नहीं कि इसके पीछे कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। तो ये कुर्बानी जो मोहब्बत की कुर्बानी होती है ना, ये आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है। और इंसान ये उसके लिए ही करता है, ये कुर्बानी इंसान उसके लिए देता है जिससे करीब होता है, जिसका कुर्ब हो जाता है या जिससे मोहब्बत होती है, उसके लिए इंसान कुर्बानियां देता है ना। माँ है आप, और आप कुर्बानी देती हैं अपनी औलाद के लिए, कितनी कुर्बानी देती हैं, कहीं नींद की देती हैं, कहीं माल की देती हैं, कहीं अपनी जान को हलकान करके कुर्बान करती हैं, बहुत तरह की कुर्बानियां इंसान देता है, इसलिए कि औलाद से मोहब्बत है। जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत होती इंसान, इतनी बड़ी कुर्बानी उसको देने के लिए उसके आगे तैयार हो जाता है। जिसको अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वो अल्लाह ताला के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां करने को भी तैयार हो जाता है। और अल्लाह ताला यही देखना चाहता है कि मोहब्बत का इम्तिहान यही है कि तुम मेरे लिए ये कुर्बानी कर सकते हो या नहीं कर सकते, कुछ दे सकते हो मेरे लिए या नहीं दे सकते, तुम क्या मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो, यही है इम्तिहान जिसको हमने दिखाना है कि अल्लाह सब कुछ तेरे लिए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, इसी तरह अल्लाह मेरी भी हर चीज तेरे लिए, मेरी औलाद है, मेरी जान है, मेरा माल है, मेरा घर बार है, मेरा सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये है वो मोहब्बत का जज्बा जो अल्लाह ताला आपसे चाहता है कि आप उसके सामने ये मोहब्बत के जज्बे का इजहार करें। फिर आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लेकर जाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनको कुर्बान करने के लिए डाल देते हैं, आखिर तक अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया कि इब्राहिम क्या वहां तक पहुंच पाता है या नहीं। बीच में शैतान आ रहा है और बरगल आ रहा है, बीच में शैतान आ रहा है और बहका रहा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान के वार उनको शिकस्त देते भी आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी में जब आप अल्लाह की इताअत के लिए बढ़ोगे, शैतान आएगा इसी तरह। शैतान आएगा, बहकाएगा, वरगलाएगा, कहेगा क्या कर रहे हो, वसवसे डालेगा। लेकिन तब ये ना करना कि उसके वसवास में आ जाओ, चलते ही रहना। उन कदमों को देखें जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम थे, कि जो रुके नहीं, जो हिले नहीं, जिनमें इतना यकीन था कि बच्चे को उंगली से लगाया हुआ है, किधर लेकर जा रहे, सैर कराने नहीं लेकर जा रहे, जिबा करने लेकर जा रहे। क्या बात है उस बाप की, यानी उन्होंने बता दिया कि ऐ अल्लाह तेरे आगे कोई चीज महबूब नहीं। और फिर जब जाके रखा है तो अल्लाह ताला ने तब मींडा भेजा है जब आखिर तक इम्तिहान ले लिया। अल्लाह इसी तरह आजमाता है अपने प्यारों को। और अल्लाह ताला फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाता है कुरान पाक में, इस काला लहु रब्बु अस्लम काला अस्लम तुले रब्बुल आलमीन। जब उसके रब ने कहा तू मुती हो जा, फरमा बरदार हो जा, तो आगे उलमा कहते हैं फा नहीं है कि फिर हो गया वो फरमाए बता, सुम्मा नहीं है तो हो गया वो फरमा बरदार, बल्कि काला, अरे उस उन्होंने एक लम्हे के लिए भी तवक्कुफ नहीं किया, एक लम्हे के लिए भी सोचा नहीं कि अभी मैं पूछूंगा, मशवरा लूंगा, अपने भाई से पूछूं, अपने दोस्त से पूछूं, अपनी बीवी से पूछ लूं, बच्चों से मशवरा कर लूं, फिर उसके बाद इताअत का मैं वादा करूंगा। जब कहा रब ने इताअत गुजार हो जा, तो फौरन कहने लगे मैं मुती हो गया रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखें, उनको अपना रोल मॉडल बनाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनकी मिसाल देके फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है कि जिसको आप देख के फॉलो करो, उसवा हसना है, एक एग्जाम्पल है आपके लिए। आप देखें जिस वक्त देखते हैं, नौजवान है और अपनी बस्ती में है, तो उस वक्त सबसे पहले सितारे को देखा तो कहा हादा रब्बी, ये मेरा रब है। फिर फलम्मा अफला, फिर जब वो डूब गया, कहा ला उहिब्बुल आफलीन, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इससे क्या हमें पता चलता है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है कि वो ये कह रहे थे, फिर उन्होंने चांद को देखा, उन्होंने चमकता देखा, फिर उन्होंने ये कह दिया, फिर उन्होंने सूरज को देखा, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है। इससे आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इस मुकालमे से पता चलता है कि आपकी भी जिंदगी में बहुत सारी चमकने वाली चीजें आएंगी, बहुत सारी अट्रैक्शन होंगी, उनको रब ना बना लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को अपना खुदा बना लेना, ये नहीं है जैसे हम कह दें कि बस अल्लाह एक है, वो मेरा खुदा है, बस बातों में कह दिया। खुदा बना लेना बहुत बड़ी चीज है। खुदा बनाने करने का मतलब ये है कि हम उसको पूजते हैं। पूजा, पूजा एक बहुत बड़ा मकाम है जो आप किसी को देते हैं। पूजा करने का मतलब किसी का ये है कि इंसान ये कहे कि मेरी सोच पे वो हावी, मेरे दिल में वो बसता है, उसकी मोहब्बत मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, उसका डर सबसे ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अल्लाह से ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं, तो आप सब कहेंगे नहीं, हम तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर नोटिस करें तो कौन है जो मेरे जहन पे छाया रहता है, कौन है जो मेरे दिल में बसता है, कौन है जिसको खुश करने के लिए मैं हर वक्त दौड़ती भागती रहती हूँ, कौन है जिसकी फिक्र मुझे रहती है कि वो मुझसे नाराज ना हो जाए, कौन है जिसके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूं, वो ही आपका खुदा है। चाहे मुंह से कितना ही बोलते रहे, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा खुदा वो है जो मेरे दिल में बसता है और जिसको मैं कभी नाराज करने का सोच नहीं सकती, जिसके लिए मैं सब कुछ दे सकती हूँ, वो ही मेरा खुदा है। तो देखें हम कि हमने किस किस को खुदा बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस डायलॉग में क्या पता चलता है कि उन्होंने जब सितारे को देखा और चांद को देखा और सूरज को देखा, कहा ये मेरा रब है, फिर जब देखा ये डूब गए, इनमें कुछ नहीं है, तो कहा कि ये खुदा नहीं हो सकते। और आपको भी अल्लाह ताला जिंदगी में दिखाता है, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आप जिनके पीछे अपने आप को हलकान कर देते हैं। जब बच्चा होता है तो उसके लिए सब कुछ क्या है, वालदैन है, उसके बाद वालदैन की मोहब्बत कम होने लगती है, फिर उसके बाद क्या, दोस्त यार है, वो सबसे महबूब हो जाते हैं, जिंदगी उठ के गिरदी घूमने लगती है, ऐसा लगता है बस यही है जो सब कुछ है। उसके बाद उसकी डिग्री, फिर उसकी जॉब, जिसको वो हर चीज समझने शुरू हो जाता है। तो दिखाया गया ये सब वो चांद सूरज तारे हैं कि जिनको देख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ये डूबने वाले हैं, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। और आप देख लो जिन चीजों के पीछे भी इंसान अपनी जिंदगी हलकान करता है सिवाय अल्लाह की जात के, वो सब डूब जाती है। एक दिन माँ बाप भी साथ छोड़ जाते हैं, एक दिन वो डिग्रियां किसी काम की नहीं रहती, वो जॉबें चली जाती हैं, वो करियर्स, वो घर, वो गाड़ियां, वो सब चीजें जिनके पीछे हम हलकान रहते हैं ना, वो हमसे दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है किसी भी चीज की अटैचमेंट तुम्हें नहीं होनी चाहिए जैसे अल्लाह के साथ अटैचमेंट है। अल्लाह ताला के साथ जो अटैचमेंट है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हर चीज से ज्यादा। हर चीज से ज्यादा तुम अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन रखो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन कितने ही सारे रिश्ते, कितने ही सारी वाबस्तगियां अल्लाह ताला से ज्यादा है हमारे दिलों के अंदर, और फिर भी हम कहते हैं हमारा रब, हमारा खुदा अल्लाह है, जबकि तुमने तो पता नहीं कितने खुदा बनाए। और वो दिलों में है, उनको हम दिल में रखे हुए हैं, उनको पूजते हैं, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी उनके गिर्द घूमती। जबकि इब्राहिम हनीफ थे, फोकस्ड अल्लाह ताला की तरफ फोकस्ड। कितनी प्यारी जिंदगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। उलमा कहते हैं कि अगर आपको अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए तो, और उससे बुलंदी चाहिए दर्जात की, तो क्या करो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वैरायटी है नेकियों की, इस तरह आपकी जिंदगी में वैरायटी होनी चाहिए नेकियों की। हर तरह की नेकी करो। कैसे वैरायटी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नेकियों की, कि देखिए सबसे पहले वतन की कुर्बानी दी अल्लाह की खातिर, कौम की, घर वालों की, अपना बाप छोड़ा, अपने घर वाले छोड़े, अपनी सारी फैमिली, अपना कबीला छोड़ा, उनकी कुर्बानी दी। फिर उसके बाद अपनी बीबी सारा को जब बादशाह ने अपने पास बुला लिया था, उसके बाद अपनी बीवी की इज्जत की, एक तरह से वो तो उनके हाथ से चली गई थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू कर दी थी और अल्लाह से मांगा था, तब भी भरोसा अल्लाह के ऊपर। फिर अपनी जान की भी कुर्बानी दी जिस वक्त आग जलाई थी उन्होंने, नमरूद ने जो आग जला दी थी, तो उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने लगे, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भरोसा किस पे था, आग तो जला देती है, उनका भरोसा किस पे था, एक अल्लाह पे, कि मेरे अल्लाह के काबू में ये आग है। उस वक्त भी कह रहे हैं हसबी अल्लाह व नेमल वकील, मेरे अल्लाह के काबू में ये आग। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछने के लिए आए हैं कि बादलों का फरिश्ता तैयार है कि यहाँ पे मीम बरसा दे और आग को ठंडा कर दे, आग को बुझा दे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मेरा रब जलाने पे राजी तो मैं जलने पे राजी, अगर अल्लाह मुझे जलाने पे राजी है जलने पे राजी। रजा, अल्लाह की रजा में राजी रहना कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखे कि अल्लाह की रजा में कैसे राजी रहा जाता है, कैसे जब अल्लाह का कोई फैसला ऐसा आ जाए जो हमें ना पसंद हो फिर भी हम राजी रहे। अल्लाह ये बीमारी आई है, तू राजी है इसमें तो मैं राजी। जैसे नबी अलैहिस्सलाम दुआए मुस्तताफीन किया है, जब ताइफ में पत्थर खाए हैं तो उसके बाद क्या है, जब दुआ कर रहे हैं अल्लाह तुमने मुझे किन के हवाले कर दिया, अल्लाह ऐसे लोगों के हवाले। लेकिन अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, तू ना बस मुझसे नाराज हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर अल्लाह राजी है तो मुझे नहीं परवाह, मैं जल जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने कैसे उस आग को ठंडा कर दिया, तो अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी, फिर बीवी बच्चों की, बीवी बेटे की, उस वक्त जब मक्का के सहरा में छोड़ के चले गए उनकी भी कुर्बानी दे दी। इंसान को फैमिली बड़ी अजीज होती है, फिर उसके बाद इस बेटे की कुर्बानी जो सबसे अजीज था उसकी भी कुर्बानी दे दी। जिंदगी सारी उनकी देखे तो कुर्बानियों की दास्तान है, कहीं से भी उठा ले हम उसमें कुर्बानी मिलती है। तो उलमा कहते हैं आप वैरायटी देखो कुर्बानियों की, हर जगह पे कुर्बानी दे रहे हैं। अगर आपको भी अल्लाह को कुर्ब चाहिए तो आपकी नेकियों में वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह मेरा तो ये कुर्बानी दे दी कि मैं नींद से जाके नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं तो अपनी नींद कुर्बान करती हूँ, अब तूने मेरे पर ये इम्तिहान क्यों डाल दिया? अरे मेरी नींद की कुर्बानी इतनी बड़ी थी, अब मेरे ऊपर कोई बीमारी आ गई या मेरे बच्चे के साथ ये हो गया, तो ये कुर्बानी तूने मुझसे क्यों मांगी, इस आजमाइश में क्यों डाला, मैं तो तेरे लिए जागा करती थी। हमारा तो एहसान देखे कितना ज्यादा हम अल्लाह ताला के ऊपर नाउज़ु बिल्ला एक एहसान के तौर पे इसका इजहार करते हैं अपनी नेकियों का, कि मैंने तो इतना इतना कुछ कुर्बान किया, मेरे साथ ये क्यों। कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप ये देखते कि अल्लाह मेरे साथ ये क्यों, ऐसा क्यों किया अल्लाह तुमने, मैं ही रह गया था? नहीं, बल्कि उनकी सारी जिंदगी ऐसे रहती है कि अल्लाह ये भी चीज है, ये भी तूने ले ली, इस चीज की कुर्बानी मांगी, इस चीज का हुक्म दिया, मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यही तो है, मैं हाजिर मेरे रब, हर चीज में अल्लाह मैं तेरे आगे हाजिर हूं, जो तेरा हुक्म मैं सरे तस्लीम खम करती। ये है वो बेमिसाल शख्सियत जिनको अल्लाह ताला ने ऐसे ही अपना खलील नहीं बना दिया। अल्लाह ताला का खलील बनने के लिए देखो इंसान को कितने रास्तों से गुजरना पड़ता है, तब खलील अल्लाह कहलाता है, तब अल्लाह के दोस्त बनते हैं। हमने अल्लाह के दोस्त बनना ऐसा ही आसान समझ लिया। हमारे आंसू बहते हैं तो किसी और के लिए, हम रातों को जागते हैं तो किसी और के लिए, शादियां हों, ब्याह हों, दोस्त आ जाए, उनके लिए जागना कितना आसान। और पूरे साल में वो 10 रातें आती हैं जो रमजान की आखिरी, उनमें एक रात जागना भी मुश्किल, कहते नींद बहुत आती है। हमारी कुर्बानियों की देखें तो अगर उठा के देखें तो क्या कुर्बानियां हैं जो हम दे रहे हैं आज, कहीं इज्जतों की कुर्बानियां, कहीं माल की कुर्बानी, कहीं जान की कुर्बानी, कहीं औलाद की कुर्बानी, हर कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी। हमसे एक इज्जत की कुर्बानी भी नहीं दी जाती किसी से। कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अल्लाह के रास्ते में वो चीज कुर्बान करता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। उन्होंने सोचा मुझे सबसे ज्यादा महबूब क्या चीज है, तो अपने आप को जवाब दिया कि सबसे ज्यादा महबूब मुझे मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत सबसे ज्यादा महबूब है। और उसके बाद उन्होंने तहिया कर लिया, मुझे कोई कुछ भी कहे मैं आगे से जवाब नहीं दूंगा, मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया मैं माफ कर दूंगा, ये इज्जत की कुर्बानी। हमारी अनाई इतनी बड़ी है, हमने अना के बुत भी खड़े कर लिए, ख्वाहिशात के बुत हमारे अंदर खड़े हुए, और ये वो चीजें हैं ना जो कि हमारे लिए इतना बड़ा बैरियर है कुर्बानी देने में, क्योंकि तो हमें इनसे बहुत मोहब्बत है। कोई ख्वाहिश मैं अपनी तोड़ नहीं सकती, मेरी अना इतनी बड़ी है कि मैं क्यों किसी के साथ सुलह करूं, मैं क्यों किसी को माफ करूं, मैं क्यों किसी से झगड़ा खत्म करूं, मैं क्यों कीना अपने दिल से निकालूं, क्योंकि मेरी अना बहुत बड़ी है। उसने मुझे ऐसा कहा तो कहा क्यों, मैं उसको एक बात के 10 जवाब दूंगी क्योंकि मेरी अना बहुत बड़ी है। कभी अना को कुर्बान करके देखा, जो चीज आपको बहुत बड़ी लगती है कभी इसकी कुर्बानी करके तो देखिए। और याद रखें जब आप अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बान करते हैं ना, तो वो जो लज्जत आती है, अगर वाकई खालिस अल्लाह के लिए कुर्बान किए, जो वो मजा आता है वो तो किसी और चीज में नहीं है। पाने में उतना मजा नहीं है जितना कुर्बान करने में मजा है, बदला लेने में उतना मजा नहीं है जितना माफ करने में मजा है। आप एक दफा आजमा के देखिए, खुद अपने लिए चीज खरीदने में उतना मजा नहीं है जितना किसी की हेल्प करके उसको आप दे देते हैं कोई चीज, उसकी जरूरत पूरी कर देने में जो मजा है। वाकई जब कभी आप आजमा के देखते हैं ना, तो पता चलता है कि अल्लाह ने इसमें कितनी लज्जत रखी है। कुर्बानी देने में बड़ी लज्जत है, बड़ी लज्जत है। तो इसलिए ये कुर्बानी दे के देखा करें कैसा लगता है, क्योंकि जन्नत एक ऐसी जगह है कि जहां पे हर चीज मुकम्मल है। ये दुनिया में जो हम खाते हैं ना, ये तो खाना एक ट्रेलर है समझ ले, असल खाना वो होगा जो जन्नत में मिलेगा। दुनिया का पीना वो कुछ भी नहीं है, ये तो एक नंबर दो नंबर चीज है जो यहाँ का पीना है, असल पीना वहां का पीना है। और दुनिया की आसाइशें कुछ भी नहीं है, ये तो एक झलक अल्लाह ने दिखाई, असल आसाइशें तो वहां की है। लेकिन वहां हर चीज है मगर एक चीज नहीं है वहां पे, और वो है अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बान कर देने का अमल, ये वहां नहीं मिलेगा। अल्लाह की खातिर अपनी नींद कुर्बान करके सजदे करना, ये वहां नहीं मिलेगा। अल्लाह की खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त करना, खाने की कुर्बानी देना और रोजा रखना, ये वहां नहीं मिलेगा। अल्लाह की खातिर किसी बीमार की जियारत करना, ये वहां नहीं मिलेगा। अल्लाह की खातिर किसी के जनाजे में शामिल होना, ये वहां नहीं मिलेगा। किसी दुखी को दिलासा देना, किसी के आंसू पोंछ देना, ये वहां नहीं मिलेगा। ये कुर्बानी जो आप करेंगे ना यहाँ, ये जन्नत में नहीं मिलेगी। इसलिए इसकी लज्जत यहाँ पाके देखें कि कुर्बानी होती क्या है और इसका मजा क्या है। क्योंकि जो इसका मजा पा लेता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पाया, फिर वो तो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मेरा जीना और मरना भी मेरे अल्लाह के लिए, मेरे दिन और रात मेरे अल्लाह के लिए, मेरी हर चीज मेरे अल्लाह के लिए। ये मोहब्बत है जो अल्लाह ताला आपसे देखना चाहता है, ये मोहब्बत है जो अल्लाह ताला चाहता है कि सिर्फ मेरी खातिर हो, किसी और की खातिर ना। इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी कुर्बानी अल्लाह ने क्यों मांगी? क्यों नहीं अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि एक मेंढा लाके ज़िबा कर दो, जैसे हमें हुक्म है? क्यों नहीं ऐसा कह दिया? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माईल अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत थी। और वो बच्चा जो दूर भी रहता हो ना, देखिए वो जब कभी घर आता है, आप में से किसी का बच्चा कहीं दूर गया है पढ़ने के लिए, जब वो घर आता तो कैसी खुशी होती, कैसे गले लगाते। वो बच्चा जो दूर भेजा हुआ था, उसकी कुर्बानी मांगी अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह आसमा के देखता है, ठोक बचा के देखता है इंसानों को। जब तुम दावा करते हो मेरी मोहब्बत का, तो वाकई मेरी खातिर कुछ कर भी सकते हो? वाकई मेरी खातिर कुछ छोड़ सकते हो? वाकई मेरी खातिर कुछ दे सकते हो? हमें तो बस इतना सा भी कह दिया जाए ना कि अपनी ब्यूटी को छुपा लो, अपनी जीनत को छुपा लो, हमसे तो वो भी नहीं होता। हम कहते ये कैसे कुर्बान करते? हमसे ये कहा जाए कि आप अपने बच्चों को दीन के काम में लगाओ, तो हम कहते हैं कि नहीं, उनका तो पढ़ाई खराब हो जाएगी। हम कहते हैं कि आओ दीन की तरफ, कुरान की तरफ, इसके सीखने की तरफ, तो कहते हैं नहीं, हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे तो दूसरे काम रह जाएंगे। हम फिर क्या कुर्बान करने को तैयार? आज सबसे कीमती चीज जो आप लोगों के पास है वो आपका वक्त है, वक्त है। बाद सब हम पैसे भी डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं, किसी ने 10 डाल दी, किसी ने 20 डाल दी, लेकिन वक्त देने को तैयार नहीं होते। कहते हैं वक्त ना मांगो, पैसे ले लो, वक्त ना मांगो मेरे से। और अल्लाह ताला ने देखना यही तो है कि जो आपको सबसे महबूब चीज है वो देते हो या नहीं, अपना वक्त लगाते हो या नहीं। कहते अभी तो हम जवान है, अभी अल्लाह की तरफ आ जाए, बूढ़े होके आएंगे। जवानी तो मेरी दुनिया के लिए, तो जवानी तो सबसे कीमती वक्त है लाइफ का। अल्लाह ताला देखना चाहता है अपनी जवानियां देते हो कि नहीं। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि जब तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, तब मेरी तरफ आते हो कि नहीं। और इंसान की जिंदगी में जो भरपूर वक्त होता है, जो इंजॉयबल टाइम होता है, वो तो वही होता है जिसमें उसके पास ताकत है, हिम्मत है। जब वो वीक हो जाए, जब वो बेबस हो जाए, जब वो उठ ही ना सके, कुर्सी से उठना मुश्किल, बिस्तर से उठना मुश्किल, चलना मुश्किल, वॉकर से चलने लगे, कहता है अब अपना वक्त अल्लाह को देता हूं। ठीक है, उसने भी दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी महबूब तरीन चीज नहीं दी उसने। इसलिए कि महबूब तरीन चीज वो थी जब उसके पास तवानाई थी, जब उसके पास हिम्मत थी, जब उसके पास ताकत थी। वो वक्त किसको दिया? जो प्राइम टाइम था लाइफ का, वो किसको दिया? जब दिमाग सही काम करता था, आप समझदार थे, अकल वाले थे, उस वक्त किसके तरफ आप भागते रहे? किसको वो वक्त दिया? जिस वक्त दिमाग काम करना बंद कर दे, आपको अब बुलाते हैं तो कहते हैं कि अब दिमाग ही काम नहीं करता, क्या करें, कुछ याद ही नहीं रहता, क्या करें, अब तो हिम्मत ही नहीं। उस वक्त हम कहते हैं अब अल्लाह को ही देना है हमने ये टाइम, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही आपको रिटायर कर दे, आपको घर बिठा दिया, जॉब ने भी फारिग कर दिया, अब तो रिटायर, अब तो घर बैठ। जब रिटायर हो जाते हैं ना, फिर कहते हैं अब अल्लाह तेरे लिए वक्त है, क्योंकि तो अब आपको कोई पूछने वाला ही ना रहा, तो अल्लाह को वक्त देने लगे। मैं सब नौजवानों से पूछती हूँ, क्या अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार हो? अगर ये भी नहीं दे सकते तो क्या दोगे? अगर बचा बचा के रखना है तो किससे बचा रहे हो? वो जिसने आपको ये सब कुछ दिया उसी से बचाते, उसी को नहीं देते? वो तो चाहता है बेस्ट मुझे दो, क्योंकि वो डिजर्व करता है कि उसको बेस्ट ही दिया जाए। हम क्या देते हैं? जो फालतू, जो बेकार, जो बस जिसको काम का ही नहीं रहा, चाहे वो जिंदगी है, चाहे वक्त है, चाहे वो माल है, चाहे वो कोई सलाहियत है। आप कपड़े देख लें, कोई भी चीज देख लें आप, जिस वक्त हमारे काम की ही ना रह जाए तब देते हैं। ये जो उठा के किसी को दे दो, इसको हमने अब क्या करना है? कि जब कोई चीज हमारे काम की हो, मसलन जवानी हमारे काम की है, इल्म है, अभी आपकी डिमांड है मार्केट में, उस वक्त कितना अल्लाह की तरफ आते हैं, कितना अल्लाह के लिए वक्त निकालते हैं। तो ये सोचने का मकाम है हमारे लिए, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो सही, दावे तो मैं बहुत करती हूँ, दावे करके मुझे ना सुनाओ, एक दूसरे को भी ना सुनाओ। मैं जी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल में तो अल्लाह, मैं अल्लाह की खातिर कुछ भी कुर्बान कर दूँ, हमें जान देने को कहा जाए, आपसे कोई जान ही नहीं मांग रहा, कोई नहीं आपसे बेटे मांग रहा। लेकिन जो चीज आपसे कही जाती है उसको आप बचा बचा के रखते हो, क्यों? और जबकि जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब जिंदगी चली जाए, और फिर इंसान कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहायाती, अरे काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। जब आखिरत में पहुंच जाएगा ना तो उसको लगेगा वो असल जिंदगी, वो तो पता नहीं क्या था, एक ख्वाब ही था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता आगे। लेकिन इंसान यहाँ पे रहते हुए भूल जाता है कि उस जिंदगी के लिए मुझे कुछ भेजना, यहाँ पे रहते कुर्बानी देने से डरता है कि पता नहीं अल्लाह ले ही लेगा। लेकिन ये भी आपको बता दूं, जहां मैंने आपको ये बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियां दी, वहां पे ये बताना बेहद जरूरी है कि मेरा रब कितना कदरदान है कुर्बानियों का। जब कोई कुर्बानी देता है तो ये ना सोचे कि ये वन वे ट्रैफिक है, इब्राहिम तो कुर्बानी दे रहा था तो आगे से क्या मिला? आखरत में तो जो मिलेगा सो मिलेगा, उनकी शान तो आखरत में जब पहुंचेंगे तो देखेंगे, अल्लाह ताला हमें वहां के उनके मकामात दिखाए। लेकिन जो दुनिया में उनको अल्लाह ताला ने अता किया कि देख लें, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश, जो माएं बैठी हैं उनसे अगर मैं पूछूं आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो ये अपना ही, बाज लोग तो खुश आगे कहते हैं हमारे लिए दुआ ना करें, हमारे बच्चों के लिए बस करें। क्या ख्वाहिश होती है? माएं जो है सबसे ज्यादा औलाद की तड़प, मेरी औलाद नेक हो जाए, मेरी औलाद सीधे रास्ते पर। अल्लाह ताला ने उनको जहां बेटे की खुशखबरी दी तो वहां पे इसहाक अलैहि सलाम के साथ याकूब अलैहि सलाम की भी खुशखबरी थी, और सिर्फ ये नहीं खुशखबरी, ये दोनों नबी होंगे अल्लाह के। और अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया कि तमाम अंबिया फिर इब्राहिम अलैहि सलाम की ही नस्ल से चलाए, हत्ता के आखिरी नबी भी, नबी अलैहि सलातो वसलाम भी इब्राहिम अलैहि सलाम की नस्ल से। अल्लाह ताला ने मक्का का शहर उनसे आबाद कराया, उनकी फैमिली से। अल्लाह ताला ने उनसे अपने काबे को तामीर करवाया, ये तौफीक अल्लाह ने दी कि उस घर का जब तक तवाफ होता रहेगा, जब तक इबादत होती रहेगी, किसके लिए अजर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने इसको बनाया था। फिर उनका नाम अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक जिंदा रखा कि आज भी आप दरूद शरीफ में उनका नाम लेते हैं। और जितने मजाहिब हैं, जितने आसमानी मजाहिब हैं, चाहे ईसाइत है, यहूदियत है, इस्लाम है, सब उनको मानते ही नहीं है, सिर्फ उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि बाज जगह पे लिखा है कि जो हिंदुइज्म में ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेके उन्होंने ब्रह्मा का वो बनाया हुआ कॉन्सेप्ट। तो यानी मुशरिकीन में भी, उस वक्त भी मुशरिकीन है मक्का भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना मानते थे कि वो उनके पीछे चलने को अपने लिए फखर करते थे कि हम उनकी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके दीन पे हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी नवाजा कि ऐसी खुशखबरियां अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने आखरत में भी उनके लिए दर्जात रखे। और दुनिया में ही उनको खलीलुल्लाह का अल्लाह ताला ने एक टाइटल दे दिया कि खलील वो होता है कि जिसका दिल हर मोहब्बत से खाली हो सिवाय अल्लाह की मोहब्बत की, उसके अंदर कोई मोहब्बत ना हो, वो खलील है अल्लाह का। इतना बड़ा अल्लाह ताला ने मकाम दे दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा खलील है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। हम तो कह दें कि अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह हमारा वलिया, हमारे मुंह से बात करने की क्या बात है, असल बात तो यह कि रब्बे कायनात कह दे कि ये मेरा दोस्त है। अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ ये टाइटल दिया, तो सुभान अल्लाह कितनी बड़ी सहादत है उनके लिए और कितनी बड़ी इज्जतें अल्लाह ताला ने उनको दी हैं कि रहती दुनिया तक ये मजाहिब जब तक चलते रहेंगे उनका जिक्र खैर ही होता रहेगा दुनिया के अंदर, हज जब तक लोग करते रहेंगे उनको याद करते रहेंगे, कुर्बानी जब तक लोग करते रहेंगे हर साल उनकी कुर्बानी को याद करेंगे, उनको इसका अजर मिलता ही रहेगा। उनकी जो सुन्नतें हैं, उनकी जो मेहमान नवाजी, उनकी जो जियाफत करना मेहमानों की, ये भी उनकी सुन्नत है, खतना उनकी सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर बड़े मकामात भी अता फरमाए। तो अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, कभी कुर्बानी करके देखे ना तो फिर पता चलता है कि अल्लाह ताला उसका बदला कैसे देता है। हम थोड़े दिले हैं ना, हमें जरा सी चीज देखते हैं हमारा दिल घटने लगता है, क्या है मिला क्या मुझे, मुझे क्या हासिल हुआ, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये दे दिया, मैं तो ऐसे करती थी, मैंने तो ये नेकी की, मुझे क्या मिला, मुझे क्या हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं होता। नहीं, हासिल होता है, उसके लिए सब्र की जरूरत है। पहले दिन ही नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कुछ खबरियां मिल गई, अल्लाह ताला ने बड़े इम्तिहानों से गुजार के उनको ये खुशखबरियां अता फरमाई हैं। तो खुशखबरियां मिलेंगी, लेकिन आप सब्र से कुर्बानी के रास्ते पे जब चलते रहते हैं तो अल्लाह खुशखबरी देता है। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा जिन्होंने बड़ी अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किल हालात में गुजारा किया, बहुत टफ हालात देखे, और इन द एंड अल्लाह ताला ने उनकी औलाद की सूरत में उनको नवाजा, अल्लाह ने उनकी औलाद ऐसी नेक कर दी कि उनके सारे गमों का पतावा हो गया। अल्लाह ताला ऐसे नवाजता है, अल्लाह ताला पता नहीं कितना अपना कुर्ब अता फरमाता है इन कुर्बानियों के नतीजे में। तो कभी कुर्बानी दे के दिल छोटा ना करें, अगर आपने अल्लाह की खातिर दिया ना अल्लाह ताला इस दुनिया में भी नवाजेगा। कभी ये ना सोचे आखरत किसने देखी, वो पता नहीं वहां पे क्या होगा, नहीं, यहाँ पे सोचे कि अल्लाह ताला देगा आपको, यहीं पे अता करेगा। और इसमें जरूरत क्या, अल्लाह पे भरोसे की। जब रब पे आप ट्रस्ट करते हैं ना, आपको यकीन है वो रब जरूर लौटाएगा, वो लौटाता है। तो यकीन रखें और अल्लाह से मांगें कि ए अल्लाह ये तेरी खातिर है और तेरे लिए दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं होती, तो अल्लाह ताला लौटाएगा, इस दुनिया में उससे भी बेहतर लौटाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता आप कोई चीज अल्लाह की खातिर कुर्बान करें और उसके बाद आपको कोई सिला ही ना मिले, उस चीज से बेहतर चीज अल्लाह ताला आपको अता करेगा। तो भरोसा करके देखें, अल्लाह ताला पे यकीन करके देखें, अल्लाह पे छोड़ के देखें चीजों को, अल्लाह की खातिर दे के चीजें देखें। और जब भी आपको शैतान बहकाए तो आपने हमेशा याद करना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम कैसे थे, क्योंकि ये बातें कुरान में ऐसे ही नहीं दी गई, ये हमें, मुझे और आपको समझाने के लिए दी गई कि जब दिल थोड़ा हो, जब दिल में तंगी हो, जब कुछ कुर्बान ना करने को जी चाहे, जब कहें हाय कैसे होगा ये, कि फिर क्या मेरा बनेगा, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लेना, उनको ना भूलना। अल्लाह ताला ने उनके दिल की भी मिसाल दी है कुरान में, अल्लाह ताला ने एक जगह पे फरमाया कि कयामत का दिन वो होगा जिस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे सिवाय कल्बे सलीम के, और फिर दूसरी जगह फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल्बे सलीम लेकर आए। कल्बे सलीम वो दिल होता है जो सलामत है हर शकुको शुभात से, हर किस्म के कीने बोझ नफरतों से, हर किस्म के शिर्क से, हर किस्म की ऐसी आलाइशों से पाक दिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। और अल्लाह ने कल्ब ही तो देखना है, कल्ब पहले सलीम होगा तो कुर्बानी दी जाएगी। और कल्ब के अंदर ही कोई और मोहब्बतें हैं, कोई और आलाइशें हैं, कोई और लालच है, तो फिर कुर्बानी कैसे दोगे। तो कुर्बानी फिर आप उसी के लिए दोगे जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत है, और देख लेना कि वो ही आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा, जिसकी खातिर अल्लाह के सिवा किसी की भी खातिर इंसान कुर्बानी देता है और इंसान उससे अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है, वही उसको छोड़ के चला जाता है, वही उसे बेवफाई करता है। अल्लाह से ज्यादा कभी किसी से मोहब्बत ना करो, चाहे औलाद है, चाहे पैसा है, चाहे घर है, कोई भी चीज है। और मैंने आपको बताया, अभी बताया कि जब आप अपने आप से पूछेंगे अल्लाह से ज्यादा किसे मोहब्बत करते हो, नहीं, मैं तो नहीं करता, लेकिन अपने आप को चेक कर लें, मैंने आपको जो सवाल बताए उनकी रोशनी में देख लें क्या छाया रहता है दिमाग पे, क्या है दिल में, किसकी खातिर जिंदगी गुजर रही है, किसके गिर्द घूमती है, खुद ही जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस्वा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी जिंदगी से सीखने की और उनकी जिंदगी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हम वाकई वो लोग बन जाए कि जो अल्लाह के दोस्त और उसके करीबी होने के काबिल, जो मुकर्रबीन हो सके। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।